यह प्रवचन भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक संख्या 7 पर श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम आपको भगवद गीता के 8वें अध्याय जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। आप मेरे बात दोहरा सकते हो। इस श्लोक की संस्कृत काफी सरल है। तस्मा सर्वेषु कलेषु मम मम अनुस्मरण युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धे संशय। ओम ज्ञानांजनशाखया चक्षुरन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं सर्वतामेन भूतले स्वयं रूपाकरं ददाति स्वामनापितरं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं सरलतां सहविना रघुनाथं तं सदैवं साद्वैतं समभूतं वैजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णां सहगणलिता श्रीविशाखान्तं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु जगत्पते गोपे सर्वगोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु सप्त कांचन गौरांगी राधे विश्वावेशिने विश्वां सुते हरे कृष्ण। श्लोक है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम गीता का अध्ययन करेंगे या किसी रूप से आध्यात्मिकता की शिक्षा का पालन करेंगे तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा या धंधा ये सब त्यागना पड़ेगा। पर इस श्लोक में तात्पर्य में बड़े स्पष्ट रूप से भगवान हमें उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार हमें इस जीवन को बिताना चाहिए। आप सब जो कि बकायदा इस कम संस्था के कार्यक्रमों में आते हो, आप तो जानते हो कि हमारा प्रचार निर्बल है गीता और भागवत के संदेश। गीता और भागवत के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि किस प्रकार से हमें इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। वेदांत सूत्र में व्यासदेव जी वैदिक साहित्य का सार प्रकट करते हैं और उस प्रसिद्ध ग्रंथ में कहते हैं अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा इस जीवन का सदुपयोग करो और दुरुपयोग नहीं। ये संभव है बड़ी सरलता से अगर हम गीता के संदेश को अपनाएं। हमारे गुरु जी की इच्छा थी कि गीता का संदेश या गीता का ध्यान स्कूलों में सिखाया जाए। प्रभुपाद जी ने, हमारे गुरु महाराज जी ने गांधी जी को एक पत्र लिखा था स्वतंत्रता के पश्चात कि आप भगवद गीता का अध्ययन पाठशालाओं में छोटी सी आयु से शुरू करवा दो। प्रहलाद महाराज जी ने भी कहा है इस विषय पर कि 5 साल की आयु से हमें इस ज्ञान का अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात है ना स्कूलों में ना कॉलेजेस में ये दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। पर इस ज्ञान की आवश्यकता है अगर आप समाज में शांति, देश में शांति और विश्व में शांति चाहते हो। भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, हमें भूलना नहीं चाहिए कि अर्जुन के माध्यम के द्वारा ये जो संदेश भगवान दे रहे हैं पूरे मानव समाज के लिए है। हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो गीता का संदेश है केवल हिंदुस्तानियों के लिए है या भारतीयों के लिए है, ये पूरे मानव समाज के लिए है। भगवान ने गीता में कहा है हाँ अहम भीजा प्रदा पिता, मैं जो हूँ सब युनियों का पिता हूँ। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं तुम सदा कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करो। कुछ दिन पहले आप भक्तों ने और यहाँ भक्तों ने जन्माष्टमी उत्सव मनाया था और शास्त्र के अनुसार भगवान का स्वरूप है पर वो दिव्यम है। ये सोचना कि परम भगवान निराकार है या जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं हमारे समान भौतिक भेद स्वीकार करते हैं, ये एक महान अपराध है। अगर आप भगवद गीता को ध्यान से पढ़ो तो क्या देखते हो, बार बार कहा गया है श्री भगवान उवाचा। श्री भगवान उवाचा का क्या अर्थ है, परम भगवान बोल रहे हैं। ये गीता का संदेश किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया, भगवद गीता में भगवान अपना दिव्य विराट रूप प्रकट करते हैं। पुराणचंद ने गीता में क्या कहा, आप हो परम धाम, आप हो सबसे पवित्र, आप हो नित्य और यह केवल मेरा विचार नहीं पर जो महान संत असीता देवला व्यासा नारद इन सब का क्या है निर्णय कि आप ही हो परम भगवान। तो ये इस संस्था या हमारे गुरु महाराज या किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं पर ये शास्त्रों का निर्णय है। क्या ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंदा विग्रह राधे राधे गोविंदा सर्व करना करना, अनेक ईश्वर हैं पर एक है परमेश्वर, एक है सबसे प्रसिद्ध ईश्वर। क्या है उनका नाम और वो कौन है, हर चीज के कारण है। उनके विषय में ये भी कहा गया है अद्य पुराना पुरुषम नवयौवनम च, हैं सबसे प्राचीन पुरुष पर देखते हैं बिल्कुल युवक के समान। तो यहाँ भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें आदेश दे रहे हैं सदा कृष्णा के रूप में उनका चिंतन करो। तो ये सोचना कि भगवान निराकार हैं या भगवान अपने आचा विग्रह या मूर्ति के रूप में प्रकट नहीं कर सकते, यह एक रूप से एक दोषी विचार है। क्योंकि परम भगवान के अनेक नामों में एक नाम है अचिंत्य, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। इसलिए जब भक्त जन भागवत को पढ़ते हैं, भक्तों द्वारा भगवान के दिव्य कार्यकलापों को सुनते हैं कानों के द्वारा, तो इसके द्वारा उन्हें अत्यंत आनंद अनुभव होता है। जैसे आपने जन्माष्टमी मनाई, आपने भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में सुना, आपने सुना पढ़ा कैसे परम भगवान प्रकट हुए थे अपने विष्णु के रूप में, सजे हुए थे गहनों के साथ, और माता पिता को क्योंकि कंस का भय था तो उनके कहने पर बेटे ने तुरंत ही क्या कर लिया, साधारण बच्चे का रूप धारण कर लिया। फिर जब आप भगवान की बाल लीला का पकड़ पढ़ते हो तो देखते हो कि किस प्रकार छोटे से बच्चे ने इतने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया है आसानी से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सदा तुम मेरा चिंतन करो। मन जो है किसी न किसी विषय का विचार तो करेगा ही। भगवद्गीता के 6 अध्याय का क्या है नियम, ध्यान योग। और इस 6 अध्याय में भगवान कहते हैं कि मन को बंधु बनाओ, शत्रु नहीं। आज हम कहते हैं समाज में ये व्यक्ति हमारा शत्रु है, ये हमारा दुश्मन है, इसके हृदय में ईर्ष्या है, इसके हृदय में द्वेष है हमारे प्रति, है ना। पर भगवद गीता के अनुसार आपका ही मन शत्रु बनता है और आपका ही मन बंधु बन सकता है। तो आप कहोगे ये तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा मन शत्रु बन सकता है और यही मन बंधु बन सकता है। तो मन को शत्रु कब माना जाता है? मन को शत्रु जब माना जाता है जब हमारे मन में शास्त्र के विपरीत विचार हो। और मन को बंधु कब माना जाता है? जबकि मन में शास्त्र पर आधारित विचार हो। तो भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि हमें मन को बंधु बनाना है, शत्रु नहीं रखना। और अगर किसी व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया तो उसने सारे विश्व को प्राप्त कर लिया, और अगर आपने मन को वश में नहीं किया तो करोड़पति क्या अरबपति भी बन जाओ, आप निराश रहोगे। आप श्रीमद् भागवत में कथा पढ़ते हो वामदेव भगवान की, शास्त्र में भगवान के अवतारों का वर्णन है, अब भगवान के अवतारों के विषय में पढ़ते हो और देखते हो कि जब भगवान अनेक रूपों में अवतारित होते हैं तो दिव्य लीला प्रकट करते हैं। इसी प्रकार भगवान प्रकट हुए थे वामन देव के रूप में। वामन देव के रूप में वो पहुँचे एक यज्ञशाला में, जहाँ की बाली महाराज एक यज्ञ कर रहे थे। बाली महाराज बड़े प्रभावित हुए इस सुंदर ब्राह्मण के रूप को देखकर। बाली महाराज ने वामन देव जी का स्वागत किया और कहा, नांगे मेरे से आपको क्या चाहिए? तो वामन देव जी तो भगवान थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इतना स्थान दो जहाँ कि मैं 3 कदम रख सकूं। बाली महाराज ने कहा, तो मुझे बच्चे नजर आते हो। अरे भाई, इतने बड़े धनी व्यक्ति के पास जाकर कोई चावल के थोड़े दाने थोड़ी मांगते हैं, मेरे से और कुछ ज्यादा मांगो, केवल तीन कदम रखने का स्थान। आप जमीन खरीदते हो, कभी उतनी जमीन खरीदते हो जहाँ तीन कदम रख सको, कम से कम 100-150-200 गज खरीदते हो। तो वामन देव बाली मणा ने कहा, और मांगो मेरे से, ये तो बहुत कम मांग रहे हो। तो वामन देव जी ने कहा उत्तर में, जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा, और जिसने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया उसको आप सारे विश्व का धन दोगे तो भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा, आप मुझे आकर्षित करने का प्रयास मत करो, मैं थोड़े से ही संतुष्ट रहूंगा। आप पढ़ते हो किस प्रकार अनेक संत महात्मा हमारी संप्रदाय में, कई प्रसिद्ध महात्मा थे जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी एक करोड़पति पिता के पुत्र थे, करोड़पति, 500 साल पूर्व उनके पिता की आमदनी थी लगभग 5 लाख रुपए महीना, और उन्होंने हर प्रकार का सुख त्यागा एक साधारण संत का जीवन निभाने के लिए वृंदावन में। हम ये नहीं कह रहे आप सब अपने घर बार को छोड़ो, धंधा छोड़ो और रघुनाथ दास की नकल करो, हाँ गलत मत समझना। क्योंकि स्वामी जी ने हमको डरा दिया, हम केवल आपको उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आप मन और इंद्रियों को वश में रखोगे तो आप हर स्थिति में संतुष्ट रहोगे। और भगवद गीता में भगवान यही कहते हैं, जिस व्यक्ति ने मन को बंधु बना लिया उसके लिए हार जीत, आदर अपमान, सुख दुख, गर्मी सर्दी एक ही समान है। और जिसने मन को नहीं जीता, कुछ हो जाए उसके जो इच्छा के विरोध, तो दुखी हो जाता है। तो इसलिए 6वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, मन पर विजय प्राप्त करो। और मन पर विजय प्राप्त करना कठिन है पर संभव नहीं। भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्णा, ये मन जो है इसको वश में लाना वायु को वश में लाने से भी ज्यादा कठिन है। मन ढीठ है, हजार बार सुनता है ये गलत काम है, जब भी करता है, सच बात है, फिर चंचल है। प्रयास रहना चाहिए मन को स्थिर बनाने के लिए, पर मन चंचल है या स्थिर है? चंचल। आज ये चीज अच्छी लगती है, कल कोई और चीज। आज आध्यात्मिक जीवन निभाने को तैयार हो, कल सोचते हो अब तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी क्या है ना, और 10 साल रुक जाओ, है ना, मृत्यु से 2-3 दिन पहले जब करना शुरू कर देंगे। कई लोग जब बिल्कुल निकम्मे बन जाए समाज में, अंधे, लगभग अंधे हो गए, बहरे हो गए, लंगड़े हो गए, गूंगे हो गए, जब वो सोचते हैं अब माला शुरू करने का समय है। और जब शरीर में थोड़ी योग्यता हो तो क्या दुनियादारी का समय है ना। तो मन जो है चंचल है, ढीठ है, तो मन को फिर वश में कैसे लाए? भगवान कहते हैं गीता में, भक्ति योग के विधियों के पालन के द्वारा यही चंचल मन स्थिर बन जाता है। तो अगर आप मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप मन को बंधु बनाना चाहते हो, अगर आप स्वामी बनना चाहते हो, स्वामी बनने का ये नहीं कि आप कीर्तनी संन्यास लो, आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी स्वामी बन सकते हो, मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। हम ये नहीं चाहते आप लोग संन्यास लो, आप गृहस्थ आश्रम में रहो अंत तक खुशी से, पर भगवान के शरण आगत हो। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति योग की विधियों के पालन के द्वारा आप मन को स्थिर बना सकते हो। तो ये नहीं सोचना चाहिए मन कभी स्थिर नहीं बनेगा, मन बंधु बन सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कृष्ण रूप में उनका चिंतन करो। हमें कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं कि भगवान का रूप क्या है। आप कई बार बच्चों को ये कहा जाता है भगवान की तस्वीर बनाओ, तो पश्चिम देश में कोई सोचता है बूढ़ा व्यक्ति है भगवान, कोई सोचता है जवान व्यक्ति है। हमें किसी प्रकार का स्पेकुलेशन या कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। हमें महान आचार्यों की कृपा से, परम भगवान की कृपा से स्पष्ट ये पता है कि परम भगवान का क्या रूप है, क्या उनका निवास का स्थान है। और उनको अगर आप मिलना चाहो तो उनका टेलीफोन नंबर भी दिया। आप तो हर एक व्यक्ति का अपना फ़ोन नंबर नहीं देते हैं कि नहीं, और भगवान को पहुंचने का साधन क्या है वो भी हमारे महान आचार्य ने खुले रूप से बताया, कुछ छुपाया भी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं सदा उनका चिंतन करो, उनका चिंतन करो किस रूप में, कृष्ण रूप में। भगवान के रूप का चिंतन करो। आप सब मंदिरों में जाते हो, राधा रमन, राधिका रमन, राधा पार्थसारथी, कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर, भगवान के अनेक रूप हैं, उनके किसी का भी चिंतन करो। आगे क्या कहते हैं, और साथ ही युद्ध करने में करते हुए कभी पूरा करो। अभी अर्जुन थे क्षत्रिय, हमारे शास्त्र के अनुसार शास्त्र का विभाजन चार वर्ण और चार आश्रम में होना चाहिए। चार वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों की तुलना की जाती है सिर के साथ, क्षत्रियों की तुलना की जाती है किसके साथ, बाहु के साथ, वैश्यों की तुलना की जाती है पेट के साथ, शूद्रों की तुलना की जाती है पैरों के साथ। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि सिर के द्वारा क्या करते हैं, दिमाग बुद्धि के द्वारा सोचते हो। हाँ, सिर के बगैर कोई रह सकता है जिंदा? आपने देखा होगा हाथ के बगैर, आंख के बगैर, पैर के बगैर, पर सिर के बगैर आपने देखा है किसी को, देखा है सड़क में चलते हो नहीं? तो इसी प्रकार समाज में ब्राह्मणों बिना अगर समाज है वो अधूरा माना जाता है। तो ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए, ये नहीं कि जिन्हों पहन लिया दो पैसे का तो अभी ब्राह्मण है, उन ब्राह्मण का आदर दो, ब्राह्मण का आचरण होना चाहिए, ठीक है ना? तो फिर क्षत्रियों की तुलना की गई किसके साथ, क्षत्रियों का क्या कर्तव्य बनता है, समाज की सुरक्षा करना, खास करके बूढ़े व्यक्तियों की, बच्चों का, स्त्रियों का। आज कौन इनकी सुरक्षा करता है, कोई करता है? आजकल बूढ़े व्यक्तियों को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, बच्चों को टीवी पालता है, और औरतों को स्वतंत्रता पूरी नहीं है। पर क्षत्रियों का कर्तव्य है इनकी सुरक्षा करना। वैश्यों की तुलना की जाती है किसके साथ, पेट के साथ। क्यों, वैश्यों का कर्तव्य बनता है गाय की सुरक्षा, खेती बाड़ी, खेती करोगे तो फसल होगी। और जो वैश्य है, जो भक्त वैश्य है, वो जानता है कि अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो यज्ञ करना आवश्यक है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण, और वर्षा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे। यज्ञ नहीं करोगे तो प्रकृति साथ नहीं देगी। आजकल आप क्या देख रहे हो भारत में और सब जगह, आपकी दिल्ली में बेशक बारिश आ गई हो ये सब, पर बाकी स्थानों में क्या देखते हो, कई जगह बाढ़ आ गई, कई जगह बिल्कुल सूखा। मैं पढ़ रहा था अखबार में बिहार में बिल्कुल सूखा है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में इतना इतना पानी आया है, सूरत में इतना पानी था, है ना, कई जगह पर कई जगह सूखा, कई जगह कुछ और समस्या, कई जगह सुनामी। तो क्यों ये हो रहा है? क्योंकि आज हम यज्ञ नहीं कर रहे। आप गोवर्धन कथा पढ़ते हो, जब भगवान गए थे अपने पिता नंद महाराज के पास, नंद महाराज इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। क्यों? किसान थे, उन्हें पता था किसान निर्भर है वर्षा के ऊपर, वर्षा निर्भर है इंद्र जी की कृपा के ऊपर, इंद्र जी की कृपा प्राप्त होगी जब आप यज्ञ करोगे। तो वैश्य जो है खेती बाड़ी करता है, गायों की सुरक्षा, गाय को माता बुलाया जाता है, सात माताएं हैं जिनमें एक है माता जो आपको जन्म देती है, एक है जो आपको पालती है, एक है ब्राह्मण की पत्नी, गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, उनमें एक है पृथ्वी और एक है गाय माता। तो गाय माता की सुरक्षा होनी चाहिए। पर आज हो रही है क्या सुरक्षा? आपके हिंदू लोग इसके कारण है, मुसलमान तो हैं पर हिंदू लोग भी इसके कारण है। तो वैश्य का फर्ज है गाय की सुरक्षा, खेती बाड़ी। और शूद्रों की तुलना की गई है किसके साथ? पैरों के साथ। पैर जो है पूरे शरीर को उठाता है। तो इसी प्रकार शूद्रों का कर्तव्य बनता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का सहयोग है। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन से, तुम इस युद्ध में लड़ो। क्यों? क्योंकि अर्जुन थे क्षत्रिय, इनका ये स्वाभाविक कर्तव्य था कि अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था आजकल के भौतिक युद्धों के समान नहीं था, जैसे इराक में युद्ध हो रहा है या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान का। ये था एक आध्यात्मिक युद्ध। किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। जैसे कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन में आपको काटता है, हाँ, कई बार तो हार्ट सर्जरी में वाक्य वो काट कर सब इलाज करते हैं, तो आप क्यों उसको काटने देते हो डॉक्टर को? अब तो उसे पैसे देते हो आपको काटने के लिए ना, आप तो उसको 2-3-4 लाख रुपए देते हो, काटो हमें और ठीक करो, है ना। पर वो क्यों काटते हैं आपको? सर्जरी क्यों करते हैं? आपके सुधार के लिए। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था समाज के सुधार के लिए, और सब जो सैनिक थे सबका भगवान श्री कृष्ण का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए वो भगवान के धाम लौट कर गए। जो व्यक्ति जीवन समाप्त करते हुए भगवान के चरण कमलों का, उनके चेहरे का दर्शन करे, वो बिना शंका के कहाँ जाता है? भगवान के दिव्य धाम में जाता है। तो अर्जुन ने पहले इनकार कर रहे थे युद्ध करने से, कई कारण थे, इनकी चर्चा के लिए समय नहीं। पर भगवान के आदेश के अनुसार अंत में उन्होंने अपनी भौतिक जिम्मेदारी को निभाया। तो भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो इस विषय में इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि कृष्णा भक्ति का ये नहीं अर्थ तुम अपनी भौतिक जिम्मेदारी को त्यागो या उनका पालन नहीं करो या उन्हें छोड़कर जंगल में आ जाओ। आप निभाओ, पर किस भावना से? ये हम कृष्णा के लिए कर रहे हैं। कृष्णा चेतना का क्या अर्थ? ये अर्थ है इस समय हमारी चेतना है अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है? क्योंकि हमारा विचार क्या है? हर कार्य करना चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए। और जब आप कृष्ण चेतना बन जाते हो, कृष्ण भावनामृत के प्रभाव में आते हो, तो आप सोचते हो हमें हर कार्य करना चाहिए भगवान की प्रशंसा के लिए। भगवान 3rd और 5th अध्याय में कर्म योग की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल आरंभ में जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, भगवान ने पूरी प्रजा को कहा कि अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो यज्ञ का पालन आवश्यक है। इसीलिए भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं तीन चीजों को अब नहीं त्याग सकते, यज्ञ, दान और क्या, तपस्या। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से तीसरे अध्याय में कहा है कि यज्ञ बिना ये जीवन जो है अधूरा माना जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इस युद्ध में लड़ो, तुम अपना भौतिक कर्तव्य करो। इसी प्रकार आप सब जो बैठे हो यहाँ, आप सबकी अलग अलग जिम्मेदारियाँ हैं। कोई व्यापारी होएगा, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बच्चों को पाल रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। कीजिए, प्रेम भावना से कीजिए कि हमने इस शिक्षा के द्वारा परम भगवान की सब सेवा करनी है। अगर आप बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बनने का प्रयास कर रहे हो तो बनिए, 10 PhD degree प्राप्त कर लो। पर यह भाव होना चाहिए कि हम शिक्षा द्वारा ये स्थापित करेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अगर आप धंधा कर रहे हो तो करो इस भावना से कि इसका परिणाम हम भगवान के चरण कमलों में अर्पण करेंगे। तो भगवान कह रहे करो पर मेरी खुशी लिए। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ युद्ध में लड़ो पर मेरे लिए, फिर अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करो। मन तथा बुद्धि, बुद्धि तो है लोगों के पास आजकल, पर बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है ना। बुद्धि तो बहुत है लोगों के पास। आप ये जो हवाई जहाज चल उड़ते हैं ऊपर, आप में से कितने व्यक्ति कभी कॉकपिट में बैठे हो? कॉकपिट कहते हैं जहाँ की हवाई जहाज का पायलट होता है। कोई बैठा है कभी कॉकपिट में? मैं कॉकपिट में कई बार बैठा हूँ। आप कॉकपिट में जाके बैठो, यह हवाई जहाज ऑटोमेटिक चलता है। आप मानो कई बार ये पायलट साहब अखबार पढ़ रहे होते हैं, बस अखबार मैगजीन सब उनके पास होता है, वो ऑटो पायलट में चला लगा देते हैं प्लेन को एक लेवल में पहुँच कर, फिर ऊपर नीचे सब ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, बुद्धि काफ़ी तेज बुद्धि होगी जो उन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई है कि नहीं? नहीं, दूर से तूफान आ रहा है 10 घंटे दूर से, वो आजकल नई जहाज़ में पता लग जाएगा भी जब तूफान आ रहा है इस स्पीड पर आ रहा है, तो ये भी बुद्धि है। आजकल देखा जाए आप सबके पास सेल फोन होंगे, आपने कभी सोचा था 10 साल पहले आपके जेब में एक सेल फोन होगा कि उससे आप काम भी पकड़ सकते, किसी को कोई आपको पकड़ सकता है? और आज के नए सेल फोन में क्या सुविधा नहीं है, टेप रिकॉर्डर भी आ गया, वीडियो कैमरा भी आ गया, स्टिल कैमरा भी आ गया, है ना। और अगले साल आपके सेल फोन में आप टीवी भी देख सकोगे। तो ये भी बुद्धि का काम है। लेकिन आप जो नाखून काटते हो तो कितना छोटा सा, उतने छोटे चिप में आज आप लाखों शब्द को कंप्यूटर में टाइप करके जोड़ के रख सकते हो। तो ये क्या कम बुद्धि का काम है? पर हम ये सब बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम तो कहेंगे नहीं नहीं देखो साइंटिस्ट कितने होशियार बन गए हैं, पर साइंटिस्ट ये जो कार्य कर रहे हैं कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि भगवान ने उनको बुद्धि दी है। तो हमें असली क्रेडिट देना चाहिए सुप्रीम साइंटिस्ट को। तो परम भगवान कह रहे हैं मन और बुद्धि द्वारा क्या करो, मुझे अर्पण करो। और तो आप कहोगे मान लो हम मन अर्पण करते हैं भगवान को, बुद्धि अर्पण करते हैं भगवान को, हर कार्य करते हैं भगवान की खुशी के लिए, पर हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? लोग पूछते हैं ना, आप लोग मंदिर आना शुरू करते हो तो आपके मित्र पूछते होंगे आपको क्या मिलता है मंदिर जाके? कोई ठेका मिल रहा है, कोई ग्राहक मिल रहा है, क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है उधर जाकर? तो आप कहते हो नहीं नहीं हमें तो असली आनंद मिल रहा है। तो क्या मिलता है? तो आप जानना, भगवान कह रहे मन मुझे दो, बुद्धि मुझे दो, सब कार्य मेरे करो, मेरा चिंतन करो, तो इसके बदले में क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे, या दूसरे शब्दों में निश्चित रूप से मेरे धाम में लौटोगे। ये जो भौतिक जगत है इसे कहा जाता है कुंथा जगत। कुंथा शब्द का अर्थ है कष्टी कष्ट। तो इस जगत में चाहे आप बिल गेट्स जितना धनी बन जाओ या बिरला टाटा जितना, आप कष्टों से अपने आप को नहीं बचा सकोगे। अगर सुख मिले भी तो थोड़े समय के लिए भौतिक सुख प्राप्त होता है। आखिर ये जवान शरीर कल बूढ़ा बनना है कि नहीं बनना? आज स्वास्थ्य अच्छा भी हो, हम एक दूसरे को पूछते हैं कैसे हो, लोग क्या कहते हैं? हाँ ठीक, ठीक नहीं भी है तो भी कहते हैं ठीक है कि नहीं? कोई ठीक नहीं है पर हम सोचते हैं हम ठीक हैं। तो एक भौतिक जगत कुंता जगत में कष्ट ही कष्ट है। जरा मरण बुढ़ापा बीमारी मन का कष्ट, प्रकृति द्वारा कष्ट और दूसरे व्यक्तियों द्वारा कष्ट। अब ये कुंता जगत के पार है वैकुंठ जगत। वैकुंठ जगत के लक्षणों का वर्णन भगवान गीता में करते हैं। एक लक्षण तो ये है वहाँ कभी अंधेरा ही नहीं होता। अच्छी बात है कि नहीं? और आपको वहाँ बल्ब वगैरह जलाने की आवश्यकता भी नहीं। तो आप कहते हो कि वहाँ पावर फेलियर हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा, वहाँ पावर फेलियर का प्रश्न ही नहीं, सेल्फ इल्यूमिनेटर है। वहाँ कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कुछ नहीं, केवल आनंद ही आनंद। आप कहोगे इसका क्या प्रमाण है, कोई देखकर आया क्या हमें बताने के लिए? तो प्रमाण क्या है इसका? ना शास्त्रों की वाणी है ना, शास्त्र की वाणी में श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखता वो दुर्भाग्यशाली है, ना आज सुखी रहेगा ना कल। फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज नो हैप्पीनेस नाउ और लेटर। अगर हम सदा ये शक करते रहेंगे ये सच है या नहीं है, ये तो लगता है कल्पना है किसी की, ये फिक्शन है, माइथोलॉजी है, तो ना आज संतुष्ट रहोगे ना कल। भगवान बड़े स्पष्ट रूप से गीता में बताते हैं कि ये बहुत एक जगह के पार है उनका दिव्य लोक, आध्यात्मिक लोक। और भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं। आप लोग आज के अखबारों में पढ़ते होंगे ऑस्ट्रेलियन सरकार एडवर्टीजमेंट दे रही है, आओ ऑस्ट्रेलिया में घूमो, हम जाते हैं वहाँ घूमने। सिंगापुर का एडवर्टीजमेंट आता है, आओ फ्लाई टू सिंगापुर एंड बी हैप्पी, है ना। इंग्लैंड में वो एडवर्टीजमेंट डालते हैं फ्लाई टू इंडिया एंड बी हैप्पी, और इंडिया में एडवर्टीजमेंट डालते हैं फ्लाई टू इंग्लैंड एंड बी हैप्पी, समझे? तो इंग्लैंड में लोगों को कह रहे इंडिया में आओ फिर खुश सुखी हो गए, इंडिया में कह रहे इंग्लैंड जाओ तो सुखी हो गए। तो हर जगह लोग सोचते हैं अगर किसी रूप से हम अपना स्थान बदल दें थोड़ा तो फिर हम ज़्यादा आनंद में ज़्यादा आनंद अनुभव कर सकोगे। पर चाहे आप यहाँ रहो वहाँ, बहुत एक संसार है, एक बहुत बड़ा जेल खाना जिसमें सब कैदी हैं। और अगर आप इस स्थिति से मुक्त होना चाहते हो तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति का सहयोग लेना पड़ेगा जो खुद मुक्त हो। अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हुए हैं और आपको छुड़ाना चाहो तो छुड़ा सकते हो, नहीं। पर अगर कोई और व्यक्ति जिसके हाथ नहीं बंधे हुए वो आकर आपकी गांठ खोल सकते हो और आपको छुड़ा सकता है। तो इसी प्रकार साधु संगत की आवश्यकता है, प्रमाणिक गुरु के सहयोग की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि आप मेरे धाम लौटोगे अगर तो मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए इस युद्ध में लड़ोगे। और भगवान आगे क्या कहते हैं तात्पर्य में, प्रभा जी क्या कहते हैं कि आप उस स्थिति पर पहुंचोगे जहाँ कि आप भगवान का चिंतन कर सको। किस माध्यम से? अगर आप भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करो। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाली अपने दिव्य नामों में, कली काले नामा रूपा कृष्णावतार। भगवान ने पूरी शक्ति डाली है दिव्य नामों में। भगवान के नामों में भगवान में अंतर है, है? नहीं है। कई बार भौतिकवादी व्यक्ति खास करके विदेशों में ये समझ नहीं पाते कि कैसे ये लोग एक ही नाम का उच्चारण बार बार करते हैं और थकते भी नहीं। कई बार लोग कहते हैं तुम्हारे, जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहले और लोगों को प्रभावित किया तो कईयों के माँ बाप कहते थे योर गुरु हैज ब्रेन वॉश्ड यू, तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हारे गुरु दिमाग को धो दिया है, तुम्हें बुद्धि तुम्हारी नष्ट हो गई है, एक ही नाम का उच्चारण करते हो दिन रात और थकते नहीं। वो समझ नहीं पाते नहीं थकते क्यों, क्योंकि भगवान ने नामों में पूरी शक्ति डाली है, भगवान के नामों में कोई अंत नहीं। तो आप सब भक्तों से ये निवेदन है कि आप हरि नाम को अपनाओ। हरे कृष्ण।